نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير طلاق کے مسائل اس میں سے آج ہم جو موضوع کریں گے وہ ہے مثالی شوہر دیکھیے طلاق کا لفظ خطرے کی علامت ہے نا تو یہ کب ہوتا ہے جب فریقین اپنا کردار ادا نہیں کرتے بظاہر شادی شوہر اور بیوی کے بیچ میں ہے لیکن دیکھا جائے تو اور بھی بہت سارے لوگ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کچھ بھی ہو اگر شوہر عقل مند ہو ذمہ دار ہو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے والا ہو اسی طرح بیوی اپنی خوبیوں کو سمجھے تو کتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آ جائیں یہ جوڑ بنا ہی رہتا ہے انشاءاللہ ہم اس میں سے ٹاپکس کو دیکھ کر پھر اس کے بعد تھوڑی سی بات اینڈ پہ کریں گے بک کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پیج نمبر 47 صفات الزوج الامثلی مثالی شوہر کی خوبیاں صفات صفت کی جمع الزوج شوہر اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے اور الامثل مثالی جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیمپلری مثالی شوہر کی خوبیاں بیوی سے حسن سلوک کرنے والا مرد بہترین شوہر ہے عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی وإذا مات صاحبکم فدعوہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہو اور میں تم سب میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو اسے ترمذی نے روایت کیا بہت ہی خوبصورت روایت ہے ظاہر آپ کو لگے گا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کر رہے ہیں لیکن سچ تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے یہاں سے ایک دلیل مل گئی دین کی بات کرنے والوں کو یعنی درس دینے والے استاد مبلغ پریچرز کے مثال کے طور پر اپنی مثال دی جا سکتی ہے شرط ایک ہے نیت ریاکاری کی نہ ہو دکھاوے کی نہ ہو شہرت کا جذبہ نہ ہو بلکہ لوگوں کو رول ماڈل بن کر دکھانے کی طلب ہو کیونکہ ہمیشہ اسی بات میں اثر ہوتا ہے جو خود آپ کرتے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود اپنی مثال دے دی تو پھر کسی دوسرے کو بھی اپنی مثال دینے کی رخصت مل گئی دوسری بات دیکھیے کہ اہل عیال کا نام کیوں لیا گیا یہ جو لفظ ہے نا اہل عیال اہل کہتے ہیں بیوی کو یا اہلیہ ہوگا تو بیوی اور اہل ہو بیسیکلی یہ لفظ اہل ہے ہم اردو میں اہل کہہ دیتے ہیں اب ہماری اردو عربی میں تھوڑا بہت تو بہرحال پروننسیشن کا فرق ہے اصل لفظ کے اہل و عیال یا اشارتاً بتا دوں کہ بہت سے لفظ عربی کے ہیں لیکن ہم اردو میں ان کا پروننسیشن بدل دیتے ہیں تو اہل کی بجائے اہل کہنا سیکھے اس سے آپ کی عربی تجوید اچھی ہو جائے گی عیال کہتے ہیں بچوں کو عیال قرآن پاک میں آتا ہے تاولو کے لفظ پہ سورۃ نساء میں کہ تمہیں بہت زیادہ بچوں کے ہونے کا خطرہ اگر ہو تو عیول عیال عیال آل یہ بچوں کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے تو اہل و عیال بیوی اور بچوں کے لیے اچھا ہو کیوں ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ جو ماں کے لیے اچھا ہو جو باپ کے لیے اچھا ہو کہہ سکتے تھے نا لیکن دیکھیے خاندانی زندگی میں پھر ماں باپ کی حیثیت دوسرے درجے پہ چلی جاتی ہے شوہر اور بیوی کا اپنا تعلق یا ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ دوسرے درجے پہ چلا جاتا ہے تو لہٰذا آپ نے کہا کہ میں تم میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں پھر یہ جو بات کہی گئی کہ تم میں سے جب کوئی فوت ہو جائے تو دوسرے کی بری باتیں کرنا چھوڑ دے اس میں کیا سبق ہے کہ زندہ لوگ بہت ہیں ان کی برائیاں کر لیجئے اب جو دنیا سے چلا گیا دیکھیں جب بھی کوئی انسان کسی کی بات کرے نا بری چھٹے پارے کی پہلی آیت لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی شخص کے بارے میں کہ وہ کسی کا برا تذکرہ کرے ہاں ایک شخص کو رخصت ہے وہ کون جس پہ ظلم کیا جائے مینر سکھا دیا کہ دوسرے کی بات کرنا دوسرے سے اپنے دل کی بات کرنا ایک تو اپنا حق لینے کے لیے ہوتی ہے نمبر ایک دوسرے پرسن کو احساس دلانے کے لیے ہوتی ہے اصلاح کے لیے ہوتی ہے پھر تیسرے درجے پہ دوسروں کو اس کے شر سے بچانا بھی مقصد ہوتا ہے یہ دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی زندہ کی بھی برائی کر سکتے ہیں اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں اور ہم راہ راست ہمارا اپنا میٹر ہے اب ایک شخص فوت ہو گیا मेरा आपसे सवाल है, क्या वो अपनी सलाह कर सकता है? क्या उसकी बात करने से किसी किस्म की खैर निकल सकती है? किसी किस्म का वो अपना दिफा कर सकता है? जिंदाओं की बुराई करेंगे ना, तो बहुत उम्मीद है कि हम गलत कहें तो वो हमारी इसलाह कर दें या वो हमारा मुगालता दूर कर दें। एक मरा हुआ शख्स है, वो क्या करेगा? तो क्या फ़ायदा है मुर्दों की बात करना? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करती थी कि लोगों, मुर्दा लोगों की हीपतें करना छोड़ दो, मरे हुए लोगों की बुराई करना छोड़ दो, जिंदा लोग बहुत हैं कि जिनकी तुम बुराई करो। अब इसका ये नहीं पता कि हज़रत आयशा ये कह रही है कि अब जिंदाओं की बुराइयाँ शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब क्या है कि जिंदा लोगों की भी ना करो लेकिन मुर्दा की तो बिल्कुल ना करो। ठीक है, क्या हमारे कल्चर में लोग मरे हुओं की भी बुराई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जब जिंदगी की किताब पहले दिन से शुरू करते हैं ना, जब मैं इस घर में आई तो मेरी सास मरहूमा ने मुझे ये कहा, वैसे अल्लाह उनको माफ़ करे, यानी मैंने नहीं करना, अल्लाह करता है तो कर ले, गलत बात है। कभी भी किसी इंसान की बुरी बात तो याद रखे ही ना। एक बात लिख ले यहाँ, आपका दिल डस्टबिन नहीं है कि हर गंद, स्क्रैच, लेफ्ट ओवर थिंग्स उसमें जाएं। अपने दिल को ऐसा बर्तन बनाइए जिसमें जमजम जाए, साफ ग्लास बनाइए, शीशे का दिल बनाएं। कोई बुरी बात कहे भी तो सुने ही ना, देखे तो देखने से इज्तनाब करे। तो जिस दिल में गंदी चीज़ें होंगी ना, उसका असर ज़ुबान पे आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नरम ज़ुबान कैसे होती है, शायद अदा से बोलने का नाम नरमी है। आप अपना दिल नरम कर लें, आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपके दिलों में दूसरों की जगह बन जाएगी। अभी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके फ़ोन में जगह नहीं है, फ़ोन में जगह नहीं। हर दूसरे बंदे से मैं जिस दिन से आई हूँ यही सुन रही हूँ, उसके फ़ोन में जगह नहीं है। तो मैंने उनको हंस के कहा, मैंने कहा आप दिल में जगह बनाएं, फ़ोन में जगह बन जाएगी। बस दफ़ा हम इतनी अजीबोगरीब चीज़ें अपने फ़ोनों में भर लेते हैं, जंग बनते हैं, हमें खुद नहीं पता होता कि इससे मुझे कितना फ़ायदा होना है या दूसरे को इसको क्या, कभी फ्यूचर में मैंने इसको यूज़ करना है। लेकिन वो आदत है ना हमें चीज़ों को जमा रखने की, तो उसकी वजह से फिर इसी तरह दिलों का भी ये हाल है। हम दिलों में गंदगी रखते ही जाते हैं। अब पहली बातें निकालेंगे तो दूसरी आएंगी ना, तो इस ओके कर दीजिए, इट्स फाइन, जो हो गया सो हो गया। अगली हदीस, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم للنساء। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपनी औरतों के लिए अच्छा है। इसे हाकिम ने रिवायत किया। क्यों? इसलिए कि बीवी बेचारी देखा जाए तो एक हद तक तो दबी हुई होती है ना, और कुछ नहीं तो उससे रुख्सत होने के लिए तो उसकी मुख्ताज होती है ना। तो लिहाजा एक कमज़ोर हस्ती के ऊपर हाथ उठाना या उससे बुरा सलूक करना, ये कौन सी बहादुरी है? आप कहें कि मैंने चुंटी मार ली तो क्या कमाल किया, मज़ा तो यह कि अब शेर को मार के दिखाएं, हाथी को मार के दिखाएं। तो अपने से कमज़ोर या दबे हुए शख्स के साथ किसी किस्म का ऐसा सलूक करना, शाउट करना, चीखना, गालम ग्लोच देना, ये दुरुस्त नहीं। क्या करते हैं अमूमन मर्द, यानी मर्द अपनी बीवियों को किस तरह दबाते हैं? कभी ऊंची बोल के, शाउटिंग अंदाज में चीख के, कभी उसकी बेइज्जती करके, दूसरों के बीच में उसका इंसल्ट करना। तो कर लीजिए, आपने क्या कमाल किया? अपने से कमज़ोर हस्ती को अगर आपने जलील कर भी लिया तो क्या है? जैसे अगर हम में से कोई अल्लाह ना करे अपनी मासी की बेइज्जती कर ले, जितनी भी कर ले, सुन लेगी चुप करके, क्योंकि उसको पता है कि फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है। और अगर उसको दूसरी को जगह मिली, सबसे पहले वो आपको छोड़ेगी कि आपकी ज़ुबान नहीं ठीक, आप उसकी बेइज्जती करते हैं, आप उसकी इज्जत का ख्याल नहीं करते। याद रखिए, गुर्बत के साथ बंदा थोड़ा सा दब तो जाता है, लेकिन इज्जत पे चोट पड़ती है तो बंदा भूखा रहना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन किसी की गलत बात नहीं सुनता। तो ज़िंदगी का असूल बनाएं, मेरी ज़ुबान से फूल झड़े, मोती झड़े, मैं अपने आप को इस तरीके से इन चीज़ों के अंदर लाना चाहती हूँ कि जिससे मैं खैर के मामले कर सकूँ। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जिन सारी चीज़ों को आप देखते हैं ना, तो आप उन सारी चीज़ों में अपने आप को ढूंढेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को इन सारी चीज़ों से जो फ़ायदा होगा ना, वो नाकाबिले बयान है। ठीक है, फिर आगे देखिएगा, बीवी को ना मारने वाला शख्स बेहतरीन शौहर है। عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة قط। حضرت عائشة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خادم یا عورت کو کبھی نہیں مارا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ دیکھیے آج کتنا پروپیگنڈا ہے کچھ لوگوں میں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مسلمان مرد عورتوں کو مارتے ہیں، नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियाँ की, हालांकि आपकी बीवी बीवी से बड़ी गवाही किसकी होगी, वो ये गवाही दे रही है कि आपने किसी खादम या औरत को कभी नहीं मारा, तो आपको मुझे भी हाथ नहीं उठाना। हम औरत तो नहीं है, मर्द पे तो हाथ हम नहीं उठा सकते, लेकिन नौकरों पे भी हाथ नहीं उठाना। अहद करें, ये हाथ क़यामत के दिन बोलेंगे। किसी पे आपकी चपत ज़रा सी सख्त लग गई, चाहे प्यार में या गुस्से में, जैसी भी, कल हिसाब होगा। आपने बुजर को देखा कि अपने खादिम को मार रहे हैं, पूछा क्यों मारा है, कहेंगे ये तंग करते हैं, खराबियाँ करते हैं। कहा क़यामत के दिन इनको भी तोला जाएगा और तुम्हारी चीज़ों को भी, फिर देखना जिसका मामला कम ज़्यादा होगा ना, उसका पता चल जाएगा। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों पर इंसान को बहुत ज़्यादा अपना मुहासबा करना चाहिए। फिर आजमाइश और मुसीबत में सब्र करने वाला शख्स बेहतरीन शौहर है। देखिए, अब शौहर की बात आ गई, कभी कभी शौहरों को भी ऐसे हालात से वास्ता पड़ ही जाता है। कदर नहीं करती बीवियाँ, ज़ुबान की तेज़ होती हैं, झगड़ालू होती हैं, ना शुक्रियाँ होती हैं, तो क्या करें फिर, सब्र कर ले, इसका बदला मिलेगा। हदीस देखते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इब्तुलिया बिशैइन मिनल बनाती फसबर अलैहिन्न कुन्न लहु हिजाबम मिनन नार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों की वजह से आज़माया गया और इसने इन पर सब्र किया, तो वो बेटियां इसके लिए आग से रुकावट होंगी। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया। अब देखिए, एक टॉपिक था कि आजमाइश और मुसीबत में सब्र करने वाला शौहर, लेकिन यहाँ नीचे हदीस जो है वो बाप के लिए आ गई। ठीक है, तो आप इस हदीस को दोनों एंगल से भी समझ सकते हैं। एक शख्स है, उसकी बेटी की शादी हुई कहीं है, अब बेटी अपने घर खुश नहीं है किसी वजह से, लेकिन वो ये सोच लेता है कि चलो इसको रखना है, इसको अच्छे तरीके से निभाना है। अगर थोड़ी बहुत वो दामाद की तरफ से या उस ताल्लुक के अंदर खराबी की वजह से जो मुश्किल आई उस पर सब्र करता है, तो उसको भी जजा मिलेगी। और अगर आप इस हदीस को इसके साथ ना भी जोड़ें, तो आजमाइश और मुसीबत में सब्र करने वाला शख्स बेहतरीन इंसान है। आप इसमें शौहर को कर दें, बाप को कर दें, इंसान को कर दें, लेकिन इसमें उन सारे बापों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जिनकी बेटियों की नाकदरी की जाए या उनको अच्छे शौहर ना मिले। कुरान तो कहता है तय्यिबातुल तय्यिबीन, पाकीज़ा पाकीज़ा के लिए और खबीसातुल खबीसीन, लेकिन समटाइम आजमाइश के लिए अल्लाह ताला अच्छे लोगों को बुरी बीवियाँ और बुरे शौहरों को अच्छी बीवियाँ दे देते हैं। तो ये सिर्फ इम्तिहान का एक पर्चा होता है, जो इसमें सब्र कर ले अल्लाह ताला उसको इसका बेहतरीन बदला देगा। फिर बेटियों को दीनी तालीम दिलवाने और अच्छी तरबियत करने वाला शख्स बेहतरीन शौहर है। अब यहाँ से मैं शौहर की बात आ रही है ना, इसको पढ़े मैं फिर आपको थोड़ा सा इसके वाज़े करती हूँ। عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستر من النار। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटियों के साथ आजमाया गया और इसने इनके साथ नेकी की, यानी अच्छी तालीम और तरबियत की, वो इस शख्स के लिए आग से रुकावट होंगी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। ये दोनों हदीसें असल में बाप की तरफ जा रही हैं कि एक बाप है अपनी बेटियों की तरबियत करे, यानी एक बेटी है। यहाँ आजमाए जाने की बाज़ मुहद्दिसीन ने यह भी तावील ली है कि बेटी वापस आ गई। अब जो बेटी कुंवारी होती है ना, अपने घर में रहती है, तो वो सबको प्यारी लगती है, लेकिन जब एक बेटी वापस आती है, रहम और तर्स तो आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो मोहब्बत नहीं महसूस होती। माँ बाप थ्रेट फील करते हैं, बोझ महसूस करते हैं, दुखी भी होते हैं और परेशान भी होते हैं। वो ये सोचते हैं कि पता नहीं अब इसका आगे कहीं रिश्ता होगा कि नहीं, पता नहीं अब हमारे ऊपर सारी ज़िंदगी के लिए बोझ तो नहीं है, ये है वो है, इस तरह की बातें करते हैं। नुकसान क्या होता है उसका, कि फिर वो अपने ही घर में अजनबी बन जाती हैं। तो ऐसी तमाम बच्चियां, कभी बेवा हो सकती है कोई बच्ची, बहुत ही शादी नहीं है अभी, अभी यंग बच्ची है और अल्लाह ने शौहर को अपने पास बुला लिया, तो माँ बाप का भी एक इम्तिहान है और इस पे भी अजर है। यहाँ देखिए कि इस्लाम हमारे अजर को ज़ाया नहीं करता, हर मौके में हर तरह के कामों के लिए इस्लाम ने हमारे लिए नेकियों के रास्ते खोले हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि हर तकलीफ़ और दुख हमें जो आता है ना, ये गुनाहों से पाक करने के लिए आता है। بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرنے والا شخص اچھا شوہر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی جی صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فإذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت وستوصو بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج استوصوا بالنساء خيرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس سے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ بڑی بات ہے، سمجھیے گا۔ دیکھیں، ساتھ ساتھ اپنے لیے لیں، ہر چیز کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ کے اندر ایمان گہرا ہوگا نا، اتنا آپ کو ناگوار چیزوں پہ صبر کرنا آسان لگے گا۔ نہ شکرہ پن جلد بازی وہی کرتا ہے جس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے۔ جس بندے کو اس بات کا جو یقین ہے کہ جو تکلیف مجھے پہنچے گی اس کا بہترین اجر مجھے ملے گا، پھر آپ بتائیے کہ کیا وہ دوسرے بندوں سے بدلہ لینا چاہے گا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں اور آپ اپنے طور پر کیسے محسوس کرتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے، ہمیں تو بس تکلیف میں ڈال کے پتہ نہیں اللہ کو کیا مل گیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور کسی کو ملے کہ یہ چھوٹی سی تکلیف مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی خیر دے گی، تو کیا کرے گا؟ یعنی آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنے بچے سے کوئی چیز لے، یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ شہر کے حکمران سے کوئی چیز وصول کریں، کون سی لیں گے؟ بچہ کیا دے گا؟ مقابلے میں دیکھا جائے تو حکمران سے زیادہ ملنے کی امید ہے۔ اب یہ تو دو انسانوں کی مثال تھی نا، اللہ اور بندے کا کوئی تعلق اس طرح کا نہیں ہے جس کو مثال میں ثابت کرے، لیکن جس کو اللہ سے اجر کی امید ہے نا، وہ بندوں سے نہیں الجھتا۔ ایک جملہ لکھ لیں، خود کو بندوں کی سطح سے اوپر اٹھا لیں۔ جب اللہ سے نظریں جڑتی ہیں، جب اللہ سے نظر ملتی ہے، جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں، پھر اس کے بعد تو بس انسان اپنا ہی محاسبہ کرتا ہے، اور کچھ تو وہ نہیں کرتا۔ تو خاموش ہو جائیے، گزر جائے گا یہ وقت۔ ان کو غصہ آ گیا، چپ کر جائیں گے۔ اس وقت پریشان ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس وقت جلدی میں تھے، ہو گیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کبھی بھی دوسرے کے حالات کو سمجھے بغیر آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ اپنے جھگڑے میں بیٹھے ہیں، آپ اپنی منہ کی بات کر کے دل کی ہلکے ہو کے بیٹھتے ہیں، اگلے کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ یقین کریں، اگر ہمارے اندر معاملہ فہمی آ جائے نا، تو لوگ ہمارے گن گائے، لوگ ہمارے قریب سے اٹھے ہی نا، لوگ ہم سے محبت کریں۔ یہ جو زبان کی تیزی اور جلدی اور جذباتیت پن ہے نا، اور پھر کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے، موقع نہیں، وقت نہیں دیکھنا، اس سے پھر انسان اپنی قدر خم کرتا ہے۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ گھر میں کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ اچھے گھر، جو مہذب گھر ہے، وہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں جو کھانے کے لیے بنائی گئی ہو۔ کہاں سوتے ہیں؟ جو جگہ سونے کے لیے۔ شاور کہاں لیں گے؟ جو جگہ اس کے لیے۔ تو زندگی میں ایک چھوٹے سے گھر سے بھی مثال سمجھیے کہ ہر چیز کی ایک جگہ اور ایک وقت اور ایک موقع ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت نہ کھائیں، سارا دن کھاتے رہیں، جب سونا ہے اس وقت نہ سوئیں، دوسرے وقتوں میں سوتے رہیں، تو یہ بے تکا پن ہے نا، یہ بے قاعدگی ہے۔ یہی چیز ہمارے مزاج میں بھی آ جاتی ہے، جو دل چاہا، جب دل چاہا، بس پکڑ کے اس کو اگل دیا۔ تو اس طرح سے انسان اپنی قدر کھوتا ہے۔ خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر خاموشی لائیں گے نا، آپ کو حکمت آئے گی۔ لکھ لیں، حکمت کا سرا خاموشی ہے۔ اور بھی بہت سارے ہیں، اللہ کا خوف بھی ہے، تقویٰ بھی ہے، اس سے محبت ہے، لیکن ریئیکٹ نہ کریں۔ لکھ لیں، ڈونٹ بی ریئیکٹری، ریئیکشن نہیں شو کرنا۔ ہم دو منٹ کا ریئیکشن شو کر کے ٹھنڈے ہوتے ہیں، بڑا خوش، گھنٹے سے صبر کیوں کر رہے تھے؟ اب جو ہی آپ بولے، آپ نے غصہ دکھا دیا، اب آپ ٹھنڈے، اگلا گرم۔ اب اس نے اپنی گرمی کسی اور پہ نکالی، وہ کسی اور سے دو جملے بول کے ٹھنڈا، تو پھر تیسرا گرم۔ ये है इस वक्त हमारी सोसाइटी का हाल। जो चीज़ मैं देखती हूँ, ईमान वालों के माशरे में इतनी बेचैनियाँ नहीं होती जितनी हमें आज अपने इर्द गिर्द दिखती है। क्यों हर बंदा परेशान दिखता है? क्या कमी है आपकी ज़िंदगियों में? ये कमी है, सब्र नहीं है, खामोशी नहीं है। ट्रैफिक में फंस गए, हॉर्न पे हॉर्न, इधर से घुस रहे हैं, उधर निकल रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। भाई सब्र तो कर लो, सब्र तो कर लो, खुद को संभालो, फिर देखिए कि मामले कितने खूबसूरत होते हैं। फिर इसके बाद आपने फरमाया, लोगों औरतों के हक में खैर और भलाई की बात कबूल करो। याद रखो, औरतें पसली से पैदा की गई हैं और पसली में सबसे ज्यादा टेढ़ी ऊपर की पसली है। मुराद क्या इसे? यानी जितने ऊंचे खानदान की औरत होगी उतनी ज्यादा टेढ़ी होगी। यानी जिस औरत के दिमाग में नशूस होगा, खुद को बहुत बड़ा समझेगी, किसी वजह से भी इंसान बड़ा समझ सकता है, दौलतमंद बाप की बेटी है, खानदान बहुत मशहूर है, और किसी ऐसे मुल्क में रहती है जहाँ का लोगों के दिमागों में बहुत शहर है, कोई ऐसा स्टेटस, किसी ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है कि जो बहुत अपने आप को बड़ा समझे, तो ये जो अंदर बड़ापन औरत के आता है ना, तो उतनी वो औरत फिर मर से टेढ़ी हो जाती है। अगर तुम इसे सीधा करना चाहोगे तो तोड़ डालोगे, और अगर वैसे ही छोड़ दिया तो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। लिहाजा इनके हक में खैर और भलाई की बात कबूल करो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। अब इस हदीस में बहुत सारी औरतें चूं चूं करती हैं कि ये क्या बात हो गई, हमें टेढ़ी पसली से क्यों कहा गया। तब देखिए कि किसी चीज़ का टेढ़ क्या है, मैं एक नाम लूंगी, आपको खुद ही बात समझ आ जाएगी। आज तो लोगों ने ब्रांड बना दी है और शायद स्टोर्स भी होंगे कर्व्स के नाम पे। कर्व क्या होता है? उर्दू करें उसकी, टेढ़ी चीज़ है। हर वो चीज़ हम पसंद करते हैं कर्व। ये औरतें अपना जिस्म क्यों सजाती रहती हैं हर वक्त? उनको अपने फिगर की फिक्र क्या है? टेढ़ा करना चाहती, मर्द तो भी कुछ पार्ट सीधे होते हैं। तो अल्लाह ने अगर उसको टेढ़पन में कहा तो क्या बुरी बात कह दी? औरत की नज़ाकत की तरफ भी इशारा है इसमें कि औरत के अंदर है। फिर इसी तरफ देखिए, टेढ़ेपन में एक डिप्लोमेसी का लफ्ज भी आता है। मर्द मोस्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और औरतें डिप्लोमेटिक। बात शुरू करेंगी ना इधर से, वो कहते हैं सीधी सीधी बात करो, कूल कॉलन सदीदा, जो बात है सीधी बात कोई नहीं करेंगी, इधर उधर की करके बाद में कहेंगी बात ही भूल गई है क्या करनी थी। होती हैं ऐसी औरतें कि नहीं? तो सीधा रहना चाहिए। तो मुराद ये कि औरत के मिजाज में कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स, छोटी सी बात पर रो पड़ेगी और छोटी सी बात पे खुश भी हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, कभी किसी बात की को इतना नोटिस नहीं लेना चाहिए उसको ले लेगी, कभी पहाड़ भी ऊपर से गुजर जाए कुछ नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि औरत जो है ना, वो थोड़ी सी हार्ड टू अंडरस्टैंड थिंग है। यकीन करें, औरतों का मिजाज मर्दों के मिजाज से कॉम्प्लेक्स होता है। आप कहते नहीं, हम तो 30 साल में अपने मर्द को नहीं समझ सके, हमारा तो मर्द ही बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। नहीं, टेढ़ा नहीं है वो, आप उसके उस मर्द तक नहीं पहुंची। 1 साल बहुत होता है एक मर्द को समझने के लिए, बीवी को तो मुझे लगता है समझने में शायद सालों लग जाए। औरतें बहुत तनव होते हैं, कलर, वो जिसको कीमोफ्लेज का नाम सुना होगा आपने, रूप धार लेती हैं। एक कीमोफ्लेज जानवर होता है, घास में रखेंगे सब्ज हो जाएगा, दरख्त पे चढ़ेगा तो ब्राउन हो जाएगा, आसमान के नीचे खुली जगह रखे पानी में रखेंगे नीला होगा। वो हालात के साथ जैसा उसका सराउंड होता है ना, वो रंग बदलता है। ये भी अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन के लिए किया हुआ। उसकी बड़ी अच्छी वीडियो भी है मेरे पास, अगर याद करवाएंगे बाद में आपको दिखा देते हैं। तो वो कीमोफ्लेज क्या होता है कि वो सिक्योरिटी होती है। औरत में ये सिक्योरिटी है, ये खूबी कह लें खामी कह लें, एक हद तक खूबी होती है जब अपने दिफा में हो, लेकिन जब दूसरों को नुकसान देने में हो तो फिर होशियारी और चलाकी बनती है। उमूमन औरतें इस तरह की हो जाती हैं। तो मर्द को यहाँ मैसेज क्या दिया गया कि बस बर्दाश्त कर लो, जैसी भी है, थोड़ी बहुत चीजें करती है, थोड़ा सा सब्र कर लो, ठीक हो जाएगी। और बाकी औरतें ठीक हो जाती हैं, ये भी याद रखिए। ज़ाहर नाकाबले तस्खीर लगती हैं, लेकिन मर्दों को बल्कि राज़ी करना ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर एक मर्द दिल में गिरा बांध लेना, फिर वो बहुत कम खुलती है। औरत कई दफ़ा दिल में गिरा बांध के खोलती है, 10 दफ़ा तो कहती है मैंने आपसे नहीं बोलना, वो कहता है तुमने कौन सा चुप रहना, फिर बोल ही पड़ना, मैं आपको नहीं कहूँगी, फिर थोड़ी देर में कहने लग जाती है। ये है सबको टेढ़ापन। और मुझे तो ये अच्छा लगता है कि औरत के अंदर, चलो शुक्र है भाई हमें भूल ही जाते हैं, हमने कहा था हम नाराज़ हैं आपसे, आप कहते हैं आप नाराज हो, कहते हैं आपको याद ही नहीं रहेगा थोड़ी देर में, देखिएगा आपकी ओ मैं तो आपसे नाराज थी। मर्द ऐसे नहीं होते, सीधे टिक 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 बात करते। तो यहाँ दो शख्सियात का तकाबुल भी है, मर्द और औरत की साइकोलॉजी बहुत फर्क होती है। इसको समझे बगैर पता नहीं जिंदगियां लोग कैसे गुजारते हैं।